अस्सलाम वालेकुम तमाम शुरका को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मोइज़ुद्दीन साहब मौजूद हैं। सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी सर ने हमारे लिए टाइम निकाला। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मोस्ट वेलकम जी। वालेकुम
मोइज़ुद्दीन
अस्सलाम।
साहब का मुख्तसर तारुफ आप सबके सामने रख देती हूँ। मोइज़ साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और बैंकिंग सेक्टर से किया। आपको इसी फील्ड में डॉक्टोरल डिग्री के लिए कायदे आजम स्कॉलरशिप से नवाजा गया, बट आपने वर्ल्ड रिलीजन्स को पढ़ने और सीखने को इस डिग्री पर तरजीह दी। मोइज़ साहब ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 22 साल मजहब के शोबे में तहकीकी मजामीन लिखे हैं। उसके बाद आपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए इसमें बराह रास्त कंट्रीब्यूट करना चाहा, जिसके लिए आपने वालदैन और उस्तादा के साथ मिलकर मुआशरे में काम करने को ही अपना कैरियर चुना। इसके लिए आपने एजुकेशनल सेक्टर ज्वाइन किया। आपने मुख्तलिफ मौजूआत पर बहुत सी वर्कशॉप्स करवाई हैं। आपकी इन काविशों के नतीजे में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने चार असूल ईमानदारी, एहतराम, नज्म व जब्त और रवादारी पर मबनी कल्चर को कायम करने की एक मुहिम का आगाज किया। इसके बाद मोइज़ साहब ने अपनी काविशों को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अपने काम के स्कोप को बढ़ाया और अपने क्लीग के साथ एक नॉर्थ कंसल्टिंग, जो कि एक एजुकेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी फर्म है, उसका आगाज किया। इन सब कामों के अलावा सर ने 6 सेकेंड से EQ प्रैक्टिशनर और EQ असेसर की सर्टिफिकेशंस भी हासिल की हुई हैं। हमारे आज के सेशन में हम इखलाको किरदार से जो हमें सवालात मौसूल हुए हैं, वो उनके जवाबात हम सर से लेने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सवाल है, इखलाक क्या है? ये दूसरे अमाल से अलहदा किसी रवैये का नाम है, या कि तमाम अमाल को मखसूस अंदाज में अदा करने का नाम है, और इखलाक का दायरा कार क्या है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि मैं समझ सकता हूँ जी, अखलाक और मोरालिटी जिसे कहते हैं, इसका ताल्लुक बेसिकली इंसान के उन इंटरनल प्रोसेसेस और उन बिहेवियर्स से रिलेटेड है। इसकी डोमेन उन प्रोसेसेस और उन बिहेवियर्स से रिलेटेड है जिसमें वो दूसरों के साथ मुतल्लक होता है। यानी जिधर जिधर मेरी जिंदगी, मेरे एक्शंस, मेरा मेरी सोच दूसरों को असरअंदाज हो सकती है, ये वो दायरा है जिसको मैं एथिक्स और मोरालिटी का दायरा समझता हूँ। इसमें जो एक चीज़ शायद काबिले डिटेल थोड़ी सी उसकी बतानी पड़े, वो तो काबिले तौजीह होगी, वो ये है कि जब मैं कहता हूँ कि इंटरनल प्रोसेसेस का नाम है, तो ये बेसिकली वो प्रोसेसेस हैं मसलन जो आपको दिखते नहीं है। मेरा मोटिव क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी मेरी इमोशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली मेरे अंदर कार फरमा है। और ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं मोरालिटी में क्योंकि ये अल्टीमेटली मेरे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अखलाक और किरदार का जो दायरा कार है वो बेसिकली उन चीज़ों से या उन एक्शन से या उस दायरे से रिलेट करता है कि जिसमें मेरे मेरे मेरी जिंदगी दूसरों के साथ मुतल्लक होती है, जितना वो दूसरों पर इम्पैक्ट कर सकती है।
सर क्या दीन का इखलाक और किरदार पर तासुर है? अगर है तो फिर इस्लामी लोग इखलाकन पसमानदा क्यों होते हैं?
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। असल में इसमें तो कोई शक नहीं, दीन के अगर आप कैटेगराइज करें दीन की तालीमात को, तो उसमें एक मेजर कैटेगरी अखलाकियात की भी बनती है। अखलाकियात की के इतलाकी यानी उसूली तौर पर इस तरह से नहीं, बिकॉज अखलाकियात का दायरा बेसिकली ज़्यादा इंसान की फितरत से रिलेटेड है, यानी वो दीन से प्रिसीड करता है, वो दीन से पहले है मेरी समझ की हद तक। जो यानी जैसे ही अल्लाह ताला जब अखलाकियात की कोई बात करता है या अखलाकी दायरे पे कोई अकाम देता है, तो वो असल में इतलाकात से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर हमें लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए। इसका एक इतलाक हो रहा है मिसाल के तौर पर पेरेंट्स के हवाले से एहसान के रवैये पे, और वो सबसे बड़ा जाहिर है कि हमारा ऑडियंस है इस मामले में, इस प्रिंसिपल से रिलेट करने में। जहाँ तक दूसरे हिस्से का ताल्लुक है, वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो सवाल करने वाले ने की है कि हम मुसलमान जनरली अखलाकियात में वीक क्यों हैं, जो मैं समझ सका हूँ आपके इस सवाल से। यानी इसमें जाहिर है कि मैं जो कुछ भी अर्ज करूँगा इसका ताल्लुक मेरी अंडरस्टैंडिंग से है, और इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आती है वो ये कि जो चीज़ हम जिस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग पड़ते हैं, वो मज़ाहिब जिसमें कि सबसे बड़ी दो मिसालें एक इस्लाम है और एक जूडियज्म है, वो मज़ाहिब के जिनमें शरीयत दी गई है, उसमें जो हमारे हमारा जो इम्तियाजी पहलू है, जो हमारा इम्तियाजी वस्फ है जिससे कि मुसलमान दूसरों से अलग होते हैं, वो अखलाकियात नहीं है। सबसे पहले तो इसको समझ लें। यानी मिसाल के तौर पर हम 5 वक्त नमाज पढ़ने में मुमताज हैं दूसरी कौमों के मुकाबले में, चुनाचे ऑटोमेटिकली अपने इम्तियाजात को हम ज्यादा स्ट्रेस अनकॉन्शियसली कर देते हैं। यानी हम वो जो हमारे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जिसको आप कह सकते हैं, या जिनको आप रिचुअल्स कह सकते हैं इस्लाम के, हम उनको ज्यादा अहमियत दे देते हैं, जबकि असल में ये वो दायरा है अखलाकियात, अखलाक और किरदार और एथिक्स और मोरालिटी का दायरा, असल में वो दायरा है कि जिसमें अल्टीमेटली जिस पर तमाम के तमाम तालीमात मजहब की भी बेस्ड हैं। यानी हमारी नमाज पे भी वो असरअंदाज होता है, हमारी रोज़ों पे भी वो असरअंदाज होता है। तो लेकिन चूंकि ये हमारा वो दायरा नहीं है कि जिसमें हम मुमताज होते हैं दूसरी कौमों के मुकाबले में, इस वजह से उसको हम अनफॉर्चुनेटली अनकॉन्शियसली कम अहमियत देते हैं। यानी मैं अगर सच बोलता हूँ तो मैं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ जो मुसलमानों के साथ खास है, मैं अगर धोखा नहीं दे रहा हूँ तो ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो मुसलमान ही सिर्फ करते हैं, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ तो ये वो चीज़ है कि जो मुझे मुसलमान बनाती है। और इसका नतीजा एक इसकी अहम वजह यह है कि यानी हम अनकॉन्शियसली उन चीज़ों को ज्यादा अहमियत देने लग पड़ते हैं कि जो हमें मुमताज करती हैं। दूसरा इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि हमारी जो टीचर्स हैं मजहब के, हम प्रॉबेबली उनकी तरफ से भी थोड़ी सी कमी हुई है कि अखलाकियात के दायरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया गया, जिसके नतीजे में जो रिचुअल्स हैं इस्लाम के वो ज्यादा स्ट्रेस हो गए, और हम ये समझने लग पड़े कि ये पूरा कर देने के बाद हमारा अब कोई मुआवजा नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि जिस तरह की मैं समझाऊं कि इंसान इबादात में कमजोरी पर तो अल्लाह ताला से माफी मांग कर बच सकता है, लेकिन जब अखलाकियात के दायरे में कमजोरी हो तो उधर हमारी जो पकड़ है वो चूंकि दूसरों के हाथ में आ जाती है, तो अब हमारे लिए माफी का चांस भी मुश्किल होता जाएगा। तो ये एक एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन इससे इख्तलाफ करना मुश्किल है जो साहिल का सवाल है।
ठीक है सर। सर अगला सवाल है कि अगर शर्मो हया बुनियादी इखलाकी इकदार में से है तो इसके बारे में पूरी इंसानियत एक जगह पर मुत्तफिक क्यों नहीं है? जिस तरह चोरी एक गुनाह है, बेगुनाह को कत्ल करना एक जुर्म है, इसके बारे में पूरी इंसानियत एक जगह पर मुत्तफिक नजर आती है।
ये देखिए, ऐसा नहीं है कि शर्मो हया के बारे में हम मुत्तफिक नहीं है, ये एक इतलाकी इख्तलाफात हो जाती है मिसाल के तौर पर। और फिर इसमें एक और चीज भी जो ज़हन में रखी जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जिस वक्त हम वेस्टर्न सोसाइटीज को म्यार बनाकर ये कहने लग पड़ते हैं कि वहां पर शर्मो हया का तसव्वुर खत्म हो गया, तो उसमें अगरचे कुछ हद तक सच्चाई भी है, ताहम मेरा ख्याल है कि इसको इतनी जनरलाइज्ड बात नहीं की जा सकती। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसको कि हम जब हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं तो शायद वो मुनासिब नहीं है। यानी देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वेस्ट एज वेल जो वेस्टर्नर्स ही हैं, जिनके हाँ शर्मो हया का तस्वर अभी तक पूरी तरह से मौजूद है। इतलाकात में इख्तलाफ हो सकता है, मिसाल के तौर पर हम ये जो लिबास पहनते हैं इसका ताल्लुक महज हमारे शर्मो हया से नहीं होता, ये कल्चर जो है इसमें वेदर का बहुत सारा एलिमेंट है। उनका लिबास हमसे डिफरेंट है, ताहम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उधर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है या हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। एक चीज जो प्रॉबेबली जिसको जिसके बारे में हमें समझना चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इंसान कई मर्तबा एक मॉरल डायलेमा का शिकार हो जाता है। दो मॉरल वैल्यूज आपस में आके एक दूसरे से जब टकराती हैं तो उस मौके पर उसको एक को तरजीह देनी होती है। जो वेस्ट में जो प्रॉब्लम पैदा हुई है वो ये है कि फ्रीडम भी एक मॉरल वैल्यू है, यानी ह्यूमन फ्रीडम जो है इंसान अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो करे, ये भी एक मॉरल वैल्यू है। इसके ऊपर कुछ पाबंदियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस चीज की डिबेट में शर्मो हया के हवाले से बहुत सारा मामला जो है वो उस ईस्टर्न सोसाइटीज के मुकाबले में बहुत कुछ मुख्तलिफ हो गया। ताहम अगेन मैं इसको रीइटरेट करना चाहूंगा दैट इट इज नॉट ईजी कि हम, या इट वुड नॉट बी करेक्ट कि हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें और ये कहें कि वहां पर शर्मो हया का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, मफकूद हो गया। डिफरेंसेस मौजूद हैं और डिफरेंसेस जो हैं वो हमारे अपने ईस्ट के अंदर भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में बसता है वो एक इक्वल लेवल पे हया के तस्वुर को का इतलाक करता है अपनी जिंदगी पर या अपने आसपास के लोगों की जिंदगी पर। डिफरेंसेस हैं हमारी जो सोशल हमारी कंडीशनिंग है उसकी वजह से भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन वैल्यू अपनी जगह पर मौजूद है और वैल्यू जो है वो पूरी तरह से वेस्ट में भी मौजूद है और ईस्ट में भी मौजूद है। ये इंसानी वैल्यू है, ये हमारी फितरत में मौजूद है।
ठीक है सर। सर ये जो अगला सवाल है इसमें वो फरमा रहे हैं कि ब्राय करम मुझे इन मजहबी जमातों के बारे में बताएं जो सियासत में शामिल हैं। मेरे ख्याल में ये मुआशरे सियासत और मजहब के लिए दुरुस्त नहीं है। मैं इसके बारे में आपकी राय लेना चाहता हूँ, इस मौजू पर रोशनी डालें।
मैं नहीं जानता हूँ जी, ये इस मामले में हर एक की राय डिफरेंट हो सकती है। मैं भी आपकी राय से इतफाक करता हूँ, ताहम आई डोंट अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दिस क्वेश्चन विद कैरेक्टर डेवलपमेंट। इससे मुझे इसकी रेलेवेंस पूरी तरह से वाजे नहीं हुई है। मैं आई एग्री विद यू, मैं भी ये पसंद करूँगा कि हम अपनी जो मजहब की बुनियाद पर सियासत करना जो है उसको ना इनकरेज करें। ताहम दिस इज नॉट रियली अ मॉरल इशू एज आई अंडरस्टैंड इट।
सर अगला सवाल है, हम अपने जज्बात को मुस्बत और बैलेंस में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बाज़ औकात यही जज्बात गैर इखलाकी हरकत की वजह बनते हैं, जैसे रिश्तों में नाइंसाफी, बद इखलाकी और खासकर सर के नौजवानों में मुखालिफ जिंस की तरफ रगबत।
जज्बात के ऊपर एक पूरी अब फील्ड वजूद में आ गई है जी, जिसको हम कैरेक्टर डेवलपमेंट में एज अ पोर्शन उसको इनकरेज भी करते हैं और लोगों को उस पर ट्रेन भी करने की कोशिश करते हैं। वो है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है वो प्राइमरली आपकी इमोशंस को समझने और उनको रेगुलेट करने की फील्ड है, यानी हमारी इमोशंस बनती कैसे हैं सबसे पहले तो इसको समझना और वो उनको हम रेगुलेट कैसे कर। मिसाल के तौर पर हम बड़े आराम से कह देते हैं कि मैंने गाली दे दी गुस्से में आ गया था, और हम जब गुस्से में आ गया था के अल्फाज बोलते हैं तो आम तौर पर वो इस तरह बोलते हैं कि गोया मेरा इसमें कोई कंट्रोल नहीं था और ये इट जस्ट हैपेंड। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है वो प्राइमरीली हमको इस काबिल बनाने की फील्ड है कि हम अपनी इमोशंस को समझें, उसके बारे में अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करें और उसको रेगुलेट करने की तरफ आए। यानी हम अगर इस वक्त गुस्से में हैं तो इससे पहले कि हम कोई रिस्पॉन्स दें किसी को या रिएक्ट करें तो हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें। इमोशंस को रेगुलेट करने के तरीके भी उसमें सिखाए जाते हैं, उसकी एक्सरसाइजेस भी उसमें करवाई जाती हैं। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फील्ड है। ये बेसिकली मायर और सेलोबे, ये दो स्कॉलर्स थे कि जिन्होंने इसको शुरू किया। इसके बाद दुनिया से इसका जो एक बहुत बड़ा तारुफ कराया वो डैनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस ने करवाया। और नाउ अब ये तकरीबन हर शख्स की जुबान पर है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जो बेसिकली मुझे अपनी इमोशन से सबसे पहले तो अवेयर करती है मेरी इस वक्त इमोशन क्या है और क्या वो इमोशन मुनासिब है उस सिचुएशन के लिए कि जिससे मैं इस वक्त हूँ। मैं अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ तो क्या मुझे दो दोस्तों के बीच में तस्वीर कराने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो मैं अपने गुस्से को किस तरह से रेगुलेट करूँ। वॉट आर दी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जिससे मेरी इमोशंस बनती हैं, कुछ उनके अंदर वो एलिमेंट्स हैं कि जो जिनके बारे में मिसाल के तौर पर मेरी सोच है जिनके बारे में मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो सकता हूँ, और कुछ वो एलिमेंट्स हैं जो सब कॉन्शियस हैं। मिसाल के तौर पर मेरे मेंटल पैटर्न्स हैं, मैं एक चीज़ को देखकर बगैर उसको समझे हुए कई दफ़ा महज इस तासुर में कि मैंने उसको क्या समझा, मेरे अंदर इमोशंस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप अचानक एक कमरे में दाखिल हुए हैं और एक वायर जो है वो कॉइल करके एक जगह पे पड़ी हुई है और आपकी नजर ने उसको सांप समझा है तो आपके अंदर फियर डेवलप हो जाएगा, और अगर आप लाइट जला के गौर से देखें और पता चले कि ये वायर है तो वो इमोशन फौरन खत्म हो जाएगी। तो इमोशन ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर काबू पा लेती है और फिर हम उसके गुलाम हो जाते हैं। इमोशंस को हम एक्चुअली थ्रू आवर परसेप्चुअल ट्रेनिंग एंड थ्रू आवर अंडरस्टैंडिंग और अपने पैटर्न्स को समझने के नतीजे में अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। इसी तरह से इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है, वो है अबाउट हैविंग अ क्लियर पर्पस इन योर एक्टिविटीज एज वेल एज योर लाइफ। अपनी जिंदगी और अपने इकदाम में अपने सामने एक वाजे पर्पस को रखना, ये भी हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो हमारी इमोशंस की रेगुलेशन में हमारी बहुत मदद कर सकती है। तो ये एक पूरी फील्ड है जी, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो हम इसकी तरबियत देते हैं अपने प्रोग्राम्स में, मेरे एक कॉलीग तो आज अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सके बिकॉज ऑफ हिज उनके एक दोस्त की पेरेंट की डेथ हो गई, अदरवाइज मैंने उनसे अभी रिक्वेस्ट की थी कि वो भी ज्वाइन करें, तो वो खास तौर पर इस फील्ड में ही काम करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ही देते हैं, और हम इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये किरदार की तामीर में इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी इनपुट।
अगला सवाल है, वालदैन से हुस्ने सलूक फरमाबरदारी की तरगीब दी गई है इस्लाम में, इसकी क्या हदूद है? क्या वालदैन के हर हुक्म के आगे सर तस्लीम कम कर देना चाहिए? अपनी जिंदगी के फैसलों में खासकर शरीक के हयात का इंतखाब इनकी रजा से होना चाहिए। ऐसे मामलात को हम इखलाकी लिहाज से मुहज्जिब रहकर कैसे हैंडल कर सकते हैं?
ये आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी सबसे पहले तो इसको समझ लें कि वालिदैन की उसके साथ हुस्ने सलूक की कोई हद नहीं है, इसमें कोई हद नहीं है। यानी आपको हर हर मामले में, हर लेवल पे, विदाउट एनी लिमिट्स, आपको अपनी इंसानी हद तक उनके साथ हुस्ने सलूक करना है, ये अल्लाह ताला को पसंद है। आपको उनका शुक्र गुजार रहना है, ये अल्लाह ताला को पसंद है। अलबत्ता इस मामले में कुछ चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। हुस्ने सलूक का मतलब फरमा बरदारी नहीं है, ओबीडियंस नहीं है। हुस्ने सलूक का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात को मानेंगे और उस पर खामोश रहेंगे। जिस तरह से अल्लाह ताला ने जो मेरी समझ है वो ये है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि अगर वो आपको शिर्क करने पर मजबूर करते हैं तो वो आपने नहीं करना, तो ये असल में एक पूरी कैटेगरी की निशानदेही की है कि जिस वक्त वालिदैन के जरिए से कोई जुल्म होता हुआ आप देखें तो वालिदैन ही की खैरख्वाही में आपको उसमें उनका साथ नहीं देना, फिर भी हुस्ने सलूक करना है। आपको हुस्ने सलूक तब भी करना है कि अगर वो आपको शिर्क पे फोर्स कर रहे हो और आप शिर्क ना करें तब भी हुस्ने सलूक करना है। हुस्ने सलूक के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई गलत काम करें तो अब आप उठकर हुस्ने सलूक का लिबादा जो है वो एक साइड पे रखें और जो करना है वो करें। आपने जो करना है अपनी जिंदगी के फैसले करने में अल्लाह ताला ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है, आपको ये हक हासिल है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले करें। इन फैसलों में मिसाल के तौर पर आपने क्या पेशा इख्तियार करना है, क्या पढ़ाई में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपने आपको क्या चीज़ पसंद है, खाने में क्या पसंद है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप एक मुकम्मल एक इंडिविजुअल हैं। और इस मामले में आपको ये नहीं कहा गया कि आप किसी भी और की कोई अतात करें, यानी अतात इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट कि जिसमें हमको खड़ा करने को कहा गया है। उसकी हदूद तो कही जा सकती हैं लेकिन हुस्ने सलूक की कोई हद नहीं है। आपको हर हाल में वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना है और जो गलतियां हो गई हैं उस पे अल्लाह ताला से भी और उनसे भी माफी मांगी। यानी हम उनसे इख्तलाफ करने का हक रखते हैं, हम उनकी बात से इख्तलाफ करने का हक रखते हैं, हम अपनी जिंदगी में अपनी प्रेफरेंसेस को पर अमल करने का हक रखते हैं। ये सब चीजें हमें अल्लाह ताला ने हमारे बुनियादी हकूक की हैसियत से दी हुई है और ये सब चीजें सब सोसाइटीज मानती हैं। और इसमें अगर कोई चीज रुकावट डालती है तो वो हमारी रिलीजियस मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी हमारी रिलीजियस मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और हमारे लिए इन हकूक के अंदर भी मुश्किल डाल देती है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जो जब भी इख्तलाफ हो जाए, जिस तरह से भी हमारा मामला हो रहा है, उसमें हमने जो कुछ भी करना है उसके अंदर, यानी वट एवर यू डिसाइड टू डू, आप वो करने का हक रखते हुए भी उनके साथ हर हाल में हुस्ने सलूक करेंगे। ये है जो जिस तरह से मैंने इस हुक्म को समझा, यानी अल्लाह ताला ने जिस वक्त ये कहा है, इसको समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त ये कहा है कि तुम उनके कहने पर शिर्क नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, तो शिर्क की वो अल्टीमेट मिसाल दे दी कि जिसको कुरान मजीद ने कहा है कि ये जुल्म अजीम है, सबसे बड़ी नाइंसाफी है। इसके अलावा जो भी नाइंसाफी आप उनके हाथों हो रही है उसमें आपको ना तो उनका आलाय कार बनना है, उनको रोकना है, लेकिन उस रोकने में भी उनके साथ जो हुस्ने सलूक है उसका दामन नहीं छोड़ना है। इस वजह से ये कहना ठीक नहीं है कि उसकी कोई हद है, उसकी कोई हद नहीं है, अलबत्ता उसको हमें इस दायरे तक रखना है, यानी हमें हुस्ने सलूक करना है, ये एक अलग चीज है। ये इस तरह से समझ लीजिए रिस्पेक्ट है कि उसकी अल्टीमेट शक्ल है कि जो हमें वालिदैन के साथ रखनी है, लेकिन ओबीडियंस को नहीं कहा गया। ओबीडियंस इज अ सेपरेट थिंग। ओबीडियंस का मतलब यह है कि वो जो भी कुछ कहेंगे उसकी बात, उनकी बात मानी जाएगी, वो तब मानी जाएगी अगर हम ठीक समझते हैं। इसी तरह से जो उन्होंने आखिरी बात पूछी है कि अपने शरीके हयात की सिलेक्शन में, इसमें आपको पूरा हक हासिल है। ये दो बेसिकली दो लोगों की चॉइस है जिसके ऊपर वो शादी कर रहे हैं। अगर आपको कोई एतराज नहीं है, जो वालिदैन ने पसंद किया रिश्ता उस पर एतराज नहीं है, तो फिर भी ठीक है और ये आपका हक है, ये वालिदैन को समझना चाहिए। हमारी सोसाइटी में असल में हुआ ये है कि हम जब किसी किसी वैल्यू की तरवीज कर रहे होते हैं तो उस वैल्यू की तरवीज में भी इम्बैलेंस हो जाता है। यानी हम मिसाल के तौर पर जब ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना चाहिए, तो अब हम वालिदैन के हिस्से को एक तो मिस कर जाते हैं कि वालिदैन की भी तरबियत की जरूरत है कि उनको क्या चीज डिमांड करने का हक है, क्या चीजें अल्लाह ताला ने उनके उनको दी हैं और क्या चीजें डिमांड करने का हक नहीं, किन चीजों में उनको बात माननी चाहिए। इसी तरह से मामलात में अगर आपको ये महसूस होता है कि जो आप बात फरमा रहे हैं वो ठीक है और वो आपके वालिद साहब की या वालदा की पसंद की या उनकी राय के खिलाफ है, तो इस मामले में आपको अपनी राय मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से उन तक देने का पूरा हक हासिल है। इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई गई।
सर, किसी के साथ किसी की बद अखलाकी या नाइंसाफी के बदले में हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए?
आइडियली तो जी इसमें जो कुरान मजीद ने कहा है कि तुम बुराई के जवाब में भलाई करो, यानी तुम्हें हर लिहाज में, हर हर मामले में अपनी वैल्यूज पे खड़े होना चाहिए। मैं इसको आमतौर पर जिस तरह से लोगों को समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, अपने कोर्सेज में भी बताता हूँ, वो ये है कि इंसान जिस वक्त उसके रवैये जो हैं वो दूसरों के रवैये पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं अच्छा करूँगा, जाहिर है कि अच्छा ही करूँगा, और मैं क्या करूँगा। और अगर आपने मेरे साथ कोई ज्यादती की या ऊंची आवाज में बोले तो मैं भी ऊंची आवाज कर दूंगा। यहाँ पर जो चीज समझने की है वो ये है कि जिस वक्त हम ये कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम एक रिएक्टिव नफ्सियात का को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, तो प्राइमरीली असल में हम अपना कंट्रोल सिचुएशन के हवाले कर रहे होते हैं। हम लोगों के हाथ में अपने आप को दे रहे होते हैं। हमारे पास एक और रास्ता भी है, वो ये कि हम अपनी जिंदगियों को कुछ उसूलों पर उस्तवार करें, प्रिंसिपल सेंटर्ड जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, जिसके नतीजे में हमारा जो हमारी जो बेसिक रिलायंस है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर हो। यानी मैं अब इस चीज से निकलने की सही करूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे अपनी जात में अपने कुछ उसूलों पर खड़े होना है। मुझे ऐसा लगता है कि दीन भी हमसे ये चाहता है, यानी दीन हमसे ये नहीं चाहता कि आप जिस तरह दूसरे कर रहे हैं आप उनके साथ भी है वैसे करें। दीन हमसे ये चाहता है कि हम अपने प्रिंसिपल्स में अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े होते हुए लोगों के साथ मामला करें, उनके लेवल पे गिरने की कोशिश ना करें। और यही अगर आप गौर कीजिए तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना भी है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ज्यादती का जवाब ज्यादती से दिया। और यहाँ पर मैं ये अर्ज करूँ कि ये उसके बावजूद कि कुरान मजीद ने इस चीज की एक हद तक इजाजत भी दे दी कि अगर ज्यादती हुई है तो उसके बदले में इतनी ज्यादती की जा सकती है जितनी हुई है, लेकिन उससे बढ़कर ना करना, इसके बावजूद। और फिर खुद उसको भी क्वालिफाई कर दिया। यानी ये बताया है कि अल्लाह ताला को जो पसंद है और जो वाकई एक कमेंडेबल रास्ता है वो ये है कि तुम उसको माफ करके अल्लाह के हवाले करो। और यही वो चीज है जिसको मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े होकर अपनी जिंदगी का चार्ज, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की सही करनी चाहिए, ना कि दूसरे के हाथ में दें। मैंने अगर दूसरों की गाली के जवाब में गाली देनी है, वरना मैं एक बड़ा डिसेंट आदमी हूँ और मैं पोलाइटली लोगों से बात करता हूँ, तो मैं असल में डिसेंट और पोलाइट आदमी नहीं हूँ। फिर मैं तब तक डिसेंट और पोलाइट आदमी हूँ जब तक मेरी सिचुएशन, मेरी मेरी सराउंडिंग्स और जिन लोगों के साथ मैं हम कलाम हो रहा हूँ वो मुझे डिसेंट और पोलाइट बनने की इजाजत देंगे, वरना कंट्रोल उनके हाथ में है। अभी इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल अपने बचपन से याद आती है। यानी हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल ही अपनी एडोलेसेंस की एज में, जब शुरू हो रही होती है हमारी बुलूगत, तो उस वक्त हमें बड़ा शौक होता है कि हम दूसरों को चैलेंज करें। और इस मामले में मुझे याद है अपना एक क्लास फेलो, उसने ये कहा था कि मैं अभी तुम्हें देखना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह इस टीचर को भगाना है। और उसने विद इन 5 मिनट्स उसको फ्रस्ट्रेट करके क्लास से छोड़ने पर मजबूर कर दिया, शदीद गुस्से के आलम में। यानी शदीद अल्टीमेट गुस्से के आलम में वो क्लास छोड़ के चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंट्रोल उसने अपने हाथ में रखा हुआ हमने दूसरे के हाथ में दे दिया। तो मेरा ख्याल में सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग इज कि हम दूसरे के रवैये में ये ढूंढें कि ये हमें एक मौका और एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है अपने अंदर एक क्वालिटी का प्रचार करने की। मैं लोगों से ये अर्ज करता होता हूँ कि देखिए, अगर आपने अपनी जिंदगी में ये फैसला किया कि मैंने पेशेंस की क्वालिटी, सब्र की क्वालिटी अपने अंदर बढ़ानी है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला आपके सामने ऐसे हालात लेकर आएंगे कि जिसके नतीजे में आपकी पेशेंस टेस्ट होगी। क्योंकि अगर वो टेस्ट ना हो तो फिर बढ़ भी नहीं सकती। यानी अगर आप बिल्कुल एक अलग सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में जिसमें क्या, या ऐसे ऐसे हालात में जी रहे जिसमें आपकी सिचुएशन कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है, तो आप ये गुमान करने लग सकते हैं कि मैं एक काफी पेशेंट आदमी हूँ। लेकिन सिचुएशन जैसे ही थोड़ी सी आपको तंग करेगी, थोड़ी सी टेंस बनाएगी, तो आपको असल में वाकया पता चलेगा कि मैं कितना पेशेंट हूँ। आई थिंक टेंस हो जाएंगे, एंक्शस हो जाएंगे, ये सारी क्वालिटीज, ये सारी इमोशंस आपके अंदर जो पैदा होती हैं ये आपको ये बता रही होती है कि हमने अल्टीमेटली वो क्वालिटी अभी अपने अंदर पैदा नहीं की जिसको हम एस्पायर कर रहे हैं। तो आई थिंक सवाल का जवाब मुख्तरन ये है कि हमें अपने प्रिंसिपल्स पे लोगों के साथ मामला करना चाहिए, ना कि दूसरों के रवैयों को स्टैंडर्ड बनाकर अपने रवैये को तय करें।
अगला सवाल है, सोसाइटी को बेहतर बनाने में ऐसी कौन सी बुनियादी आदत हैं जो हमें अपनाने की जरूरत है?
देखिए दो चीजें हैं जो कि, एक तो मैं ये अर्ज करूं कि दो दो लोग हैं सबसे पहले, तो यानी देर आर टू काइंड ऑफ पीपल हु आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इग्नोर्ड इन सोसाइटी, कि जिनके जिनकी तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर ये जो मैं आपसे अर्ज करूंगा, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, आदात क्या होनी चाहिए, इसको चूंकि ये कोई हतमी बात नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप भी इसमें इजाफा फरमा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम जिस वक्त कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं या ये समझते हैं कि किरदार की तामीर होनी चाहिए, तो हम कुछ कुछ उसके मजाहिर हम अपने सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये देखा है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए लोगों लोगों का ये ख्याल है कि हम अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दें बच्चे, तो ये कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। ये एक बड़ी सेकेंडरी चीज है और ये बड़ी बाद में आनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये समझ लें कि दो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट जो इस मामले में कैटेगरी ऑफ पीपल है और विच आर हु आर द मोस्ट इग्नोर्ड एज वेल, वो टीचर्स और पेरेंट्स हैं। हमारे असातिज़ा और हमारे वालिदैन की कोई तरबियत नहीं होती है, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं कि इस चीज में भी, कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी हमें कोई काम करना चाहिए, या ये भी कोई फील्ड है जिसके नतीजे में कुछ असर पड़ेगा। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। दूसरी चीज ये, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट की जो का जो मुंतहा होता है वो आमतौर पर कुछ मजाहिर तक रिलेट कर जाता है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट बेसिकली कुछ एटीट्यूड का नाम होना चाहिए, यानी हम जो सच्चाई हमारे सामने आएगी उसको मानेंगे, और अगर मेरे सामने जो सच्चाई आई है उससे कुछ मुख्तलिफ है जो इसको आपने माना है, तो मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा और उसके बारे में टॉलरेंट रहूंगा। मैं उसमें ना तो आपका मजाक उड़ाऊंगा और ना आपको लेबल्स देना शुरू कर दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझूं। तो इसमें एम्पथी, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी मैंने जिस तरह मैंने अर्ज किया, वो अगर हम उन एटीट्यूड्स में डेवलप कर दें अपने लोगों के अंदर, तो वो आदात जिसको आप कह रही हैं, वो आदात मैं उन प्रिंसिपल्स और उन एटीट्यूड्स को समझता हूँ, ना कि कुछ खास अमल हैं जिसके नतीजे में कि कैरेक्टर डेवलप होता है। और यही हमने कोशिश की है अपने अपने कोर्सेज में भी, इसी चीज की कोशिश करते हैं कि हम उन 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 एटीट्यूड्स की तरफ तवज्जो दिलाएं। वेरी ऑनेस्टली मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, इस मामले में जो कुरान मजीद की रीडिंग है, इसको भी जाहिर है कि हम करते ही रहते हैं, कुरान मजीद की तिलावत को हमें करते ही रहना चाहिए भी, उसमें जो चीज सामने आती है वो कुरान भी असल में एक एटीट्यूड है जिसको के गलत और एक एटीट्यूड है जिसको के ठीक करार दे रहा है। यानी उस एटीट्यूड, मिसाल के तौर पर हक समझ में आ गया है, अब वो पसंद है या नापसंद है उसको माना जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई है कि इंसाफ क्या है, अब वो आपके खिलाफ जाता है या आपके हक में जाता है, उसको उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। ये जो एटीट्यूड्स हैं ये असल में हमको गुड एंड ईविल की तरफ लेके जाते हैं। इसी वजह से आपको याद होगा जो आपका पहला सवाल था, उसमें मैंने ये अर्ज किया था कि ये जो मोरालिटी है, अखलाकियात है, इसका दायरा कार हमारे इंटरनल, वो इंटरनल प्रोसेसेस और वो बिहेवियर्स जो दूसरों से रिलेट करते हैं, ये है। तो वो उन इंटरनल प्रोसेसेस को ठीक करना है बेसिकली कैरेक्टर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। वालेकुम
जी,
अस्सलाम।
मैं एक और सिलसिले में आपसे बात करना चाह रही हूँ। मोइज़म जी साहब, आई वर्क फॉर एनजीओ, वॉलंट्री वर्क करती हूँ, कॉल्ड वॉर अगेंस्ट रेप। तो मैं उसमें बहुत से रेप के केसेस देखती हूँ, इंसेस्ट के केसेस देखती हूँ।
according to the estimate for the United Nations, 36% of girls and 29% of boys in Pakistan have suffered child sexual abuse. और आपने भी देखा है और आपने भी पढ़ा है, मैंने भी, कि मदरसों में क्या हो रहा है और फैमिलीज में फादर्स आर रेपिंग डॉटर्स, द मदर कीप्स क्वाइट बिकॉज ऑफ द ऑनर ऑफ द फैमिली एंड बिकॉज शी इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड. तो ये इतना सीरियस मसला है बिकॉज स्टेटिस्टिक्स हर रोज वी स्टडी एंड वी ट्राई टू हेल्प द रेप विक्टिम्स. आपके हिसाब से वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, बिकॉज ये तो कुरान की तालीम मदरसों में दी जा रही है. व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद अस एंड वेयर आर आवर मॉरल्स रिगार्डिंग दिस? शुक्रिया
जी. देखिए, मैं ये समझता हूँ जी कि हम बजाय सोसाइटी में एक बैलेंस्ड ग्रोथ करने के, हमारी सोसाइटी एक सेग्रीगेशन हमारे यहाँ एक वैल्यू बन गई है. हम ये समझते हैं कि अगर हम लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग रखेंगे तो उसके नतीजे में फ्रस्ट्रेशन नहीं डेवलप होंगी, लेकिन हमारे मीडिया के अंदर वो सारी चीज़ें स्टिमुलेंट बनी हुई हैं कि जो पूरी दुनिया देख रही है. और एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जिस वक्त इंसान के पास उसके रिलेशनशिप्स में और उसके पेयर्स, जब उसके रिलेशनशिप्स में जो होने चाहिए थे, मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट्स उसके उसके टीचर्स उसके जो हैं उनके साथ उसकी उसके इमोशनल रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, तो उसके नतीजे में ये जो वैक्यूम है इसको फिल करने वाले असल में आपको फरिश्ते नहीं आएंगे, वो उसके पीयर्स होंगे जो कि इन स्टिमुलेंट से पूरी तरह से एक्सपोज हैं. होता ये है कि अगर सोसाइटी में आप के जो अच्छे इन्फ्लुएंसेस हैं वो काम ना कर रही हों, तो उसके नतीजे में ऐसा नहीं होगा कि बच्चा इन्फ्लुएंसेस के बगैर पले बढ़ेगा, बच्चा बुरे इन्फ्लुएंसेस में पढ़ने लग पड़ेगा. और वो जो अनफॉर्चुनेटली जो जिसको हम बुरा इन्फ्लुएंस कह रहे हैं वो भी वही है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है. एक तो जिस चीज़ को आपने दीनी मदरसों का हवाला दिया, अनफॉर्चुनेटली हमने उसमें इतनी ज़्यादा सेग्रीगेशन कर दी है जो कि अननेचुरल हद तक हो जाती है. हमारी इबादत गाहों में भी, हमारी इबादतों में भी अगर आप तारीख में जाइए तो उसमें एक बैलेंस था, एक इसमें एक सेग्रीगेशन भी थी, एक मिक्स्ड, जिस तरह सोसाइटी में अल्लाह ताला ने जो नेचर इंसान की नेचुरल एनवायरनमेंट रखी हुई है उसके हिसाब से मिलना जुलना भी था, लेकिन हमने उसको एक अननेचुरल हद तक बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया है. और वहाँ पर उसके नतीजे में जो हम जिंस परस्ती है उसकी खबरें आती रहती हैं. मुझे नहीं मालूम किस हद तक सच है, किस हद तक उसमें एग्जेजरेशन होती है. दिस इज मोर फॉर यू टू डिसाइड, जो कि आप लोग जो इस तरह से इससे प्रैक्टिकली काम करते हैं. लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो जो फ्रस्ट्रेशंस डेवलप हो रही हैं और फिर जो इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी इन्फ्लुएंसेस का मतलब ये है कि वो फ्रस्ट्रेशंस को निकालने के रास्ते डेवलप हो जाते हैं जिस वक्त के आप अपने बच्चों को उनके पीयर्स के हवाले कर देते हैं. मेरा जहाँ तक ख्याल है जिस वक्त तक हम सोसाइटी में अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें वो वैक्यूम्स खुद फिल करने के लिए एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स उसको तैयार ना हो, और वो भी जाहिर है कि वो खुद भी इस वक्त पेरेंट्स और टीचर्स, इस तरह आपने मिसाल दी है, वो भी इन्हीं सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस में पल बढ़ रहे हैं और उसके नतीजे में उनके अंदर भी वो खामियां पैदा हो रही हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी. तो इट इज अ डिफिकल्ट, इट इज अ विशस साइकिल कि जिसको हमें ठीक करना है. और ये ठीक हम उस तालीम ही से और उस तरबियत ही से कर सकते हैं कि जो हमको एक बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ लेके जाए. यानी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम उस बैलेंस से महरूम हैं. और हमारी जिंदगी में अगर आप गौर कीजिए कि हमारे एडोलेसेंस और हमारे एडल्ट्स, ये दोनों ही विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज बचपन तो एक जगह पे खत्म हो जाएगा और बाकी सारी जिंदगी टिल द एंड ऑफ टाइम हमारी एडल्टहुड ही चलनी है. जिस वक्त हम इस एज में पहुंचते हैं तब भी हम मीनिंगलेस और पर्पजलेस जिंदगी गुजार रहे हैं. हमारा कोई एम नहीं है जिंदगी में, हमारी कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम एस्पायर कर रहे हैं, और अगर कोई है भी तो वो पैसा या शोहरत और इस तरह की चीजें हैं. और ये जो चीजें होती हैं अगर आपकी सोसाइटी में एक्टर्स प्लेयर्स स्पोर्ट्समैन जो हैं जिस वक्त ये आइडियल बनना शुरू हो जाती है, और जाहिर है कि उसमें जो बहुत बड़ा एलिमेंट जो सामने आता है वो उनकी एक एक एलैबोरेट लाइफस्टाइल, और वो मुझे मुझे अगर मैसर नहीं है तो मैं उसके बारे में फ्रस्ट्रेटेड फील करूंगा, और अपने पीयर्स के साथ मिलकर तो अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने की तरफ बढ़ूंगा। बामकसद जिंदगी देना, मकसद के मुताबिक जिंदगी को गुजारना, ये वो चीजें हैं कि जो हमारी इस कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर लाजमन पैदा होनी चाहिए। यानी इफ वी वांट टू डेवलप गुड कैरेक्टर इन आवर चिल्ड्रन एंड आवर जनरेशंस, तो हमें ये लाजमन अपने अंदर ये चीज पैदा करनी चाहिए, इसकी प्रमोशन करने की जरूरत है जी। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग जिस चीज की तरफ आपने इशारा किया, बट इट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जी सर, हम लोगों ने पढ़ा कि जो बच्चों के किरदार की डेवलपमेंट करने के लिए उनमें उनको अनकंडीशनल लव देना एक हमने एक इंग्रेडिएंट के तौर पर पढ़ा, तो सर उसमें उसमें कहां मुझे एहसास हुआ कि अनकंडीशनल लव देने से बच्चे के बिगड़ने के इम्कान बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे अगला स्टेप क्या है या किस तरह से उसको एक मॉन्स्टर बनने से बचाया जा सकता है कि उसके बावजूद उसके देने के बावजूद वो अपने अपनी हद में रहे और अच्छी चीजों को सीखने की तरफ तवज्जो कर सके।
देखिए ये बात के अनकंडीशनली लव हमें बच्चों को अनकंडीशनली देनी चाहिए, उनको हमारी मोहब्बत के लिए को डिजर्व करने के लिए कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन इसके साथ ही और भी कुछ एस्पेक्ट्स थे जो हमने देखे थे। मिसाल के तौर पर ये बात कि आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर डूइंग, आपका उन व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे आर फीलिंग, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपकी अपनी जो डेवलपमेंट है, अपना जो आप एक मॉरल बैटल लड़ रहे हैं हर लम्हा, इनफैक्ट हम जिंदगी गुजारते हुए ये लड़ रहे हैं, वो उनके सामने आनी चाहिए, सो दैट वी डोंट अपीयर एज परफेक्ट in front of them, we appear as students ourselves, learners, खुद उनके सामने बने। नंबर तीन ये कि हम वो जो बच्चा है जिस वक्त उसको वो किसी moral dilemma का शिकार होता है, जिस वक्त उसको कोई problem पेश आती है, तो वो आपके साथ उसको share कर सकता हो, उसको judgment का ये खौफ ना हो, उसको मोहब्बत के चिन जाने का खौफ ना हो। और नंबर चार एक और aspect बड़ा important है, वो ये कि उसको उसकी उसके इंटरेस्ट्स के मुताबिक जिंदगी का कोई मकसद देना। इसमें आपको एज अ मेंटर, एज अ पेरेंट और एज अ टीचर एक रोल प्ले करना चाहिए उनकी हेल्प करने में, कि हम उनको किस तरह से एक बामकसद जिंदगी गुजारने में मदद कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सेशन में इनकॉर्पोरेट करूँ और बड़ी डिटेल से करूँ, बल्कि शायद उस पर एक अलग सेशन शुरू किया जाए, वो है बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेजेस को, डेवलपमेंटल फेजेस को समझना। यानी हमारे बच्चे कुछ स्टेजेस और कुछ फेजेस से गुजरते हैं जिंदगी में, हम सब इंसान उन फेजेस से गुजरते हैं जो नेचुरली हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज डेवलप करते हैं और कुछ एबिलिटीज एक फेज में नहीं होती हमारे अंदर, उनको समझ कर उनके साथ मामला करना, और ये समझना कि अगर हम इनकी सेटिस्फाई कर सकेंगे इस वक्त की जरूरत, तो उसके नतीजे में इनकी जो जरूरत सेटिस्फाई होगी, इससे ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए गलत हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर मेरी जो मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक स्टेज पर मेरी जरूरत है या मेरी एक इम्पल्सिव स्टेज है जिसको हम इम्पल्सिव स्टेज कहते हैं, इसमें बच्चा जो है वो इम्पल्सिव पे चलने वाला होता है। यानी अगर उसका दिल कर रहा है तो वो जो दिल कर रहा है वो करेगा, वो कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचेगा। अगर बहुत ज्यादा उन इम्पल्सिस को जकड़ के रखा जाए तो वो जो ये स्टेज है उसकी इम्पल्सिव होने की, ये जिंदगी में बहुत लेट चलती है फिर। यानी अनलेस उसको ये इम्पल्सिस पे जिस हद तक उसके लिए सेफ है अमल करने दिया जाए, वो इस इम्पल्सिव स्टेज से निकलने में मुश्किल हो जाती है उसको। यानी और मैं इसमें बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ जो इम्पल्सिवली एग्जाम कर देते हैं, दे डोंट थिंक मच अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये असल में इम्पल्सिव स्टेज का डिले हो जाना है, तो स्टैग्नेट कर जाती है वो जो डेवलपमेंट है। अगर हम एक ठीक एनवायरनमेंट दें तो उसमें एक स्टेज जो के रूबा अमल हो रही है वो आएगी और गुजर के बच्चा अगली स्टेज पे चला जाएगा, उसके लिए अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना आसान हो जाएगा। हम ये चाहते हैं, जाहिर है अभी जब ये बात हुई थी, ये सवाल हुआ था कि हमारे बच्चे सेल्फ रेगुलेटेड भी बने, जाहिर है कि ये सब हम चाहते हैं। नाउ इफ दिस इज व्हाट वी वांट देन वी शुड नो कि ये बच्चे की एक डेवलपमेंटल स्टेज है जिससे पहले नहीं हो सकता, और उससे पहले उसने इम्पल्सिवली बिहेव करना है। अगर उस वक्त उसको जकड़ के रखा जाएगा, उसको फोर्स किया जाएगा कि उसने लाजमन अपने मामलात को ठीक तरह से अंजाम देना है, तो उसके नतीजे में उसकी जो इम्पल्सिस हैं वो उसमें प्रोलॉन्ग कर जाएंगी, ये स्टैग्नेट कर जाएंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से मालूम होती है, और इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल से कभी अगर हमें मौका मिला तो इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इमोशंस को अगर कंट्रोल किया जाए या दबाया जाए, गुस्सा है या दीगर जो इमोशंस हैं, तो इससे क्या पर्सनैलिटी में कोई मजीद बिगाड़ नहीं पैदा हो सकता इमोशंस को सप्रेस करने से?
बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी, बिल्कुल हो सकता है जी, इसीलिए मैंने इमोशंस को दबाने की हवाले से बिल्कुल कोई बात नहीं की जी, मैंने इमोशंस को रेगुलेट करने के हवाले से बात की है। यानी हम इमोशंस को नेविगेट करें, हम इमोशंस को ठीक डायरेक्शन दें, बजाय इसके कि हम इमोशंस को सप्रेस करें, हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने में का मतलब बेसिकली ये है कि उसको डायरेक्शन दे दें। यानी इफ और उसके तरीके हैं जो कि हम स्टडी करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की फील्ड में, कि जिसमें हम हाउ डू वी बिकम फ्रॉम एंगर टू मोर कमिटेड, फ्रॉम एंगर टू कन्विक्शन, इसको चेंज करना है हमें, वो चेंज हम कैसे कर सकते हैं, उसके तरीके हम उसमें सीखते हैं जी। तो सप्रेस करने से नुकसान होगा, मैं इससे एग्री करता हूँ जी, एंड आई वेरी वेरी ऑनेस्टली एग्री विद दिस, और मेरा ख्याल है कि इसको इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसको अगर आप देखना चाहें तो अपने इस पर अमल करना चाहें, इसका इतलाक करना चाहें, तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कि बच्चों को इस चीज़ को अलाउ करें कि वो अपनी इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हो, उनको सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इस एस्पेक्ट को उनको अलाउ करें सो दैट दे कैन डिवेलप अ मोर बैलेंस्ड पर्सनैलिटी विद यू।
सर वेरी गुड लेक्चर, वेरी प्रिसाइज, वेरी बैलेंस्ड, वेरी हम्बल। मेरा सवाल ये है कि जी आजकल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आप शायद इन पर्सन नहीं करते, व्हाट्सएप ग्रुप्स में करते हैं, फेसबुक में करते हैं, तो उस पे कोई डिफरेंट किस्म के बिहेवियरल पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। तो दो सब्जेक्ट हैं आमतौर पे डिस्कशन होती है, एक होता है रिलीजियस और एक होता है पॉलिटिकल। तो इन दोनों में बड़े अच्छे लोग ग्रुप्स में होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड, अपने जमाने में बड़े बड़े लीडर रहे होते हैं, लेकिन इस पे आके बड़े ऑड बिहेवियर हो जाते हैं। यहाँ तक हो जाता है कि लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, और आपकी ओपिनियन से काउंटर आर्गुमेंट करने की बजाय आपके जहन तक पहुंच जाते हैं कि ये तो मुनकर हदीस है, ये तो तजद्दद पसंद है। तो ये पैटर्न्स बड़े अजीब से डिस्टर्बिंग से हो जाते हैं कई दफा, इस पे कोई गाइड करना चाहेंगे?
बेसिकली देखिए, अभी अभी जब ये बात हो रही थी कि हम लोगों के गलत रवैये पे क्या करना चाहिए हमें, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में देना है हमें। यानी हम अपनी जिंदगी में बजाय इसके कि दूसरे के सवाल से या दूसरे के बिहेवियर से अपने बिहेवियर को डिटरमिन करें, हमें अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े होना चाहिए। ये जो अभी आपने बात फरमाई है कि बड़े रीजनेबल लोग होते हैं, मेरा ख्याल है हर आदमी बड़ा रीजनेबल होता है कि जब तक कि उसकी दुखती रग को ना छेड़ा जाए। प्रॉब्लम ये है कि रीजनेबलनेस और अनरीजनेबलनेस नुमाया ही उस वक्त होती है जिस वक्त के दुखती रग छिड़ जाती है। आप किसी के ऊपर तनकीद कर दें और तब भी वो रीजनेबल रहे तो ये एक वाकई रीजनेबल आदमी है, लेकिन अगर आप उससे जनरल वेदर की डिस्कशन कर रहे हैं या स्पोर्ट्स की डिस्कशन कर रहे हैं और वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई भी आदमी प्रॉब्लम में مبتلا نہیں ہوگا، ایکسیپٹ جدھر اصل میں ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو کرکٹ میچ پہ، تو ادھر شاید اسپورٹس پہ بھی ایموشنز فلیئر اپ ہو جائیں گے. تو آئی بلیو دیٹ الٹیمیٹلی یہ اصل میں نفس کی تہذیب ہی ہے جی. یعنی جب آپ جو آپ نے پرابلم جس چیز کا بیان فرمایا ہے، یہ اصل میں نفس ہی کی تہذیب ہے کہ جس میں ہم اپنی نفس کی تہذیب نہیں کر سکے. چنانچہ ہوتا یہ کہ جو ایسے ٹاپکس ہے کہ جس میں ہمارے جذبات فلیئر اپ نہیں ہوتے، اس میں ہم بڑے ریزنیبل رہتے ہیں، اور جس میں جذبات فلیئر اپ ہو جاتے ہیں ادھر ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں رہتے. اس معاملے میں یہ دونوں ہی جو ٹاپکس ہیں، سیاست بھی اور ریلیجن بھی، اس کو ہم چونکہ کچھ ایبسلوٹ ریالٹیز سمجھتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جس وقت ہم ایٹیچیوڈ کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں، تو اس میں ہمارے پیش نظر سچی بات کو ماننا اور اس بات سے اختلاف کرنے والے کی بات کو سمجھنا اور اس کو یہ حق دینا کہ وہ اختلاف کر سکے. یہ جو ایٹیچیوڈز ہیں یہ جب تک ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوتے اس وقت تک اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو سے کہ ہم ریزنیبل لوگ ہیں. یعنی ایک آدمی ہے، اس نے میری یہ بات ساری سنی ہے، وہ یہاں پہ ابھی بتا دیتا ہے مجھے کہ آپ کی ساری بات جو ہے اس سے مجھے بالکل اتفاق نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی کیا میں وہ جس کو ابھی آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح سے بات کرتا رہا تو پھر پتہ چلے گا. یعنی ابھی تو اٹس اے ویری گڈ انوائرمنٹ جس میں کہ سب لوگ بڑے اچھی طرح سے بات چیت سن رہے ہیں، اس میں میرا اچھا رہنا جو ہے وہ تو کوئی کمال نہیں ہے. جب ٹیسٹنگ انوائرمنٹ پیدا ہو جائے، جس وقت پیشنٹس ٹیسٹ ہونے لگ پڑے، اب ہے سوال کہ کیا واقعی پیشنٹ آدمی ہے. تو ریزنیبل آدمی ہونے کو بھی آپ جلدی نہ کریں. ویسے تو ہمیں سب کے بارے میں یہ گمان کرنا ہی چاہیے کہ وہ ریزنیبل ہی ہوگا، لیکن بہت جلدی حالات بتا دیتے ہیں کہ کون کتنا ریزنیبل ہے.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سر جی، خیالات کی پاکیزگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کسی بھی شخص کے بارے میں بدگمانی سے بچنا، یا کسی بھی جنسی حوث سے متعلقہ خیالات کا اچانک ذہن سے گزر جانا، مطلب وہ تو جیسے غیر ارادی بالکل اختیار میں ہی نہیں ہوتے، تو کیسے یہ یعنی کہ حاصل کی جا سکتی ہے سٹیج کے انسان سب، جس میں بعد میں پھر انسان کو خود ایک شرمندگی یا ایک اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر رہتا ہے، تو کیسے یہ خیالات کی پاکیزگی حاصل کریں؟
بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے جی. دیکھیے، ہم عام طور پر ایک کانسیپٹ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، اور وہ کانسیپٹ بیسیکلی میں اس کو ایج ریلیٹڈ سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اگرچہ وہ رکھا نہیں جاتا. ہم اپنے بچوں کو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، اور ہمیں کس طرح کا تعلق اس کے ساتھ مینٹین کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ خود ایک ڈیولپمنٹل سٹیج کی چیز ہے، جو اس سے پہلے ٹیچنگ اگر آپ دیں گے تو وہ اصل میں بچہ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا، اس کی لیول سے اوپر کی چیز ہے. جس وقت ہم جس چیز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں فیتھ ان گاڈ، اصل میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیے یہ ہے کیا چیز. یعنی اللہ تعالیٰ میری زندگی میں، میرے لمحے لمحے میں شامل ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو لمحہ اس سے خالی ہے وہ پھر شیطان کے حوالے ہو سکتا ہے، بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. اس چیز کو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کئی مرتبہ یہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اس کو جو حضوری کی کیفیت ہے اس کو اپنی زندگی میں زیادہ کریں، یعنی اس کو ٹرائی کریں، اس کی کوشش کریں. یعنی دیکھیے، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جو قرآن مجید نے جو وجہ بتائی ہے اس کو پڑھنے کی، وہ وجہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے. اور انفارچونیٹلی، یہ میں آپ کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور پہ تنقید کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ایسی بہت ساری نمازیں میں پڑھ چکا ہوں کہ جس میں مجھے نماز کے بیچ میں بھی خدا یاد نہیں آیا. یعنی وہ ایک ریچول تھا کہ جس کو میں نے پورا کر دیا، تکبیر بھی کر دی اور سلام بھی پھیر دیا، لیکن خدا کی حضوری نہیں میسر آئی اس میں. اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ جو بات ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں بھی خدا یاد رہے، یہ بڑا مشکل ہے کہ حاصل ہو, اور اس کو میں نے اپنی کانشیسنیس سے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیے یہ ایک جنگ ہے کہ جس کو مجھے اپنی کانشیسنیس سے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ کی زندگی میں ابھی ایسے لمحات آتے ہیں, اور یہ کس کے نہیں آتے, یہ سبھی کے آتے ہیں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, یہ بڑی جرات کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ یہ سوال آپ نے کر دیا, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی پرابلم ہے, یہ ہم سب کی پرابلم ہے. دیکھیے وہ جو کہا ہے نا جی کہ من شر الوسواس الخناس, کہ پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس مردود سے کہ جو انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے, یعنی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. یہ جو ایسپیکٹ ہے, یہ جس وقت میرا دل خدا کی یاد سے خالی ہوتا ہے, یہ اس کو موقع مل جاتا ہے کہ ہم یہ کریں. اور جس وقت خدا کی یاد سے خالی ہوتا ہے, یہ تو ایک اور بھی طریقہ ہے کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری بھی قبول کرے, کہ بجائے اس کے کہ میں ہر چیز شیطان پہ ڈال دوں, میں اگر کسی موقع پر ایک غلط چیز میں مبتلا ہوں, میں اس میں انوالوڈ ہوں, اس میں ٹائم سرف کر رہا ہوں, تو اس وقت ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اگر خیال آ جائے کہ اس وقت خدا میرے دماغ میں, خدا میرے دل میں, خدا میرے ذہن میں نہیں ہے, اور مجھے اس کو اس کی حضوری میں جینا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی میرے پاس آخری چند لمحات ہو سکی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت یہ ختم ہو جائے گی. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز وٹ ایور آئی ہیو ڈن جسٹ بیکاز یہ جو موقع تھا اس کو میں انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ میں گزارنا چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی جو زندگی ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہونے لگ پڑے گی. آپ کو اگر کبھی زندگی میں ایک اصول کو اپنی زندگی کا گائیڈنگ پرنسپل بنا لیں, اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اے بیڈ ہیبٹ, اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ دیٹ بیڈ ہیبٹ. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں برائی کو چھوڑنا ہے, مسئلہ یہ بنا لیں کہ میں نے اپنے 24 گھنٹوں کو اچھائی سے بھرنا ہے. اگر میں نے اپنی زندگی کے اچھے کاموں کو اپنی زندگی میں پھیلانا شروع کر دیا, تو میرے پاس برائی کرنے کے ٹائم کو لمیٹڈ کرنا پڑ, یعنی آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائے گا وداؤٹ ایون فوکسنگ آن دیٹ ایول اور بیڈ ڈیڈ. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس بلیف کے تقاضوں کے مطابق, اس خدا کی حضوری میں جینے کے تقاضوں کے مطابق خدا کی یاد کو زیادہ کر لیں. یعنی یہ بات کہ مجھے خدا اور خدا کے بساطت سے آخرت یہ ہر وقت یاد رہے, اس کے نتیجے میں میری زندگی پاکیزہ ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ.
سر یہ ایک سوال آیا ہے کہ اسپریچولیٹی کو ایکسپلین کر دیجیے کیا چیز ہے.
اسپریچویلٹی میری کوئی یوز ٹرم نہیں ہے جی. اسپریچویلٹی بہت بہت ویریڈ معنوں میں یوز ہوتی ہے, اور میں نے اس کو اسی وجہ سے ٹرم کو یوز کبھی کیا نہیں اس طرح سے. لیکن ایک تو جگہ پر جب میری بات چیت ہوئی, تو جو میری پریفرڈ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو مورل حیثیت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیسے بنائیں. یہ دس شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز دا فیلڈ آف اسپریچویلٹی, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا دیٹ دس از ناٹ اے یونیورسل ڈیفینیشن, اور اس معاملے میں پوری کی پوری صوفیانہ ٹریڈیشن بھی اور بلیک میجک کی ٹریڈیشن بھی جو ہے اس کو بھی لوگ اسپریچویلٹی میں ڈال دیتے ہیں. تو اٹس اے ویری میڈیٹیشن کو مثال کے طور پر اسپریچویلٹی میں ڈال دیتے ہیں, جس کو میں میڈیٹیشن کو ایک بڑی اچھی اور بڑی کام کی چیز سمجھتا ہوں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ اسپریچویلٹی. میڈیٹیشن کو میں کانشیسنیس ریزنگ ٹیکنیک کے طور پر خود بھی پریکٹس کرتا ہوں, لوگوں کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ پریکٹس کریں. کانشیسنیس ریزنگ ٹھیک ہے جی, یعنی یہ بات کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو خالی رکھ کر صرف اپنی فیلنگز اور اپنی تھاٹس کو آبزرو کرنا. یہ ابھی کسی نے سوال کیا, میری نظر کے سامنے سے گزرا ہے, میں اس کے حوالے سے کہ میڈیٹیشن کیا ہے. میڈیٹیشن سے میری مراد اپنے ذہن کو اپنی جو نارمل یو نو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے الگ کر کے تھوڑی دیر کے لیے فوکس کرنا کہ آپ کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں اور کیا فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان خیالات کے نتیجے میں, اس پر فوکس کرنا اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا, اور اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بھی سمجھ لیں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. which is a very very important thing. وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اپنے ذہن کے اوپر اور اسی طرح سے اپنی زندگی کے اوپر کنٹرول حاصل ہوتا ہے. کنٹرول سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے, یہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن آج بھٹکتا پھرتا ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا, میں اگر ابھی یہاں پر آپ سب سے یہ کہوں کہ ذرا 5 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لیں اینڈ جسٹ کیپ یور مائنڈ کمپلیٹلی فری آف آل تھاٹس, تو میں آپ سے عرض کروں یہ بڑا مشکل کام ہوگا. یعنی اٹ ول بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو کیپ یور مائنڈ فری آف آل تھاٹس, اس لیے کیونکہ ہم نے اس کا اپنی زندگی کا کنٹرول جو ہے, اپنا دماغ جو ہے وہ پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ خود سے ہی ہمارے ہمیں خیالات لاتا رہتا ہے. یعنی آپ کہیں گے کہ مجھے خیال آ گیا, آٹومیٹکلی آ جاتا ہے خیال. یہ کنٹرول اپنے اندر ڈیولپ کرنا, کانشیس ہونا کہ کیوں ایک خیال آ رہا ہے اور کس چیز کے بارے میں پریشان ہوں میں. سم ٹائمز یو ول فیل دیٹ یو آر جسٹ ورڈ اینڈ یو ڈونٹ ایون نو واٹ یو ورڈ اباؤٹ. تو یہ کنٹرول آپ کی زندگی پہ آپ کو سیلف کانشیس بنانے کے لیے میڈیٹیشن از اے ویری گڈ ٹیکنیک. اس کو میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں, میں اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں.
سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے تزکیے کے لیے کہتا ہے, تو ہمارے یہ اخلاقیات یا اخلاق و کردار کا جو ہے وہ تزکیے سے یہ کس طرح ڈیپلی اس کا ریلیونس بنتا ہے, اس کو مختصراً بتا دیں, کیونکہ ویسے تو یہ کافی لمبا سوال شاید ہوگا.
عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی موسٹ ویلکم, جی موسٹ ویلکم. عام طور پر اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ اصل میں ہمارے معاملات کا تزکیہ ہے. یعنی ہمارا دوسروں کے ساتھ جو ہم زندگی گزارتے وہ انٹریکشنز میں آتے ہیں, اور انٹریکشن سے مراد کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے. یعنی مثال کے طور پر جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اپنی روز مرہ زندگیوں میں ہمارے ایکشن جو ہیں وہ کچھ جانوروں پر امپیکٹ کر رہے ہیں, کچھ نباتات پر, درختوں کو امپیکٹ کر رہے ہیں, کچھ دوسرے انسانوں کو امپیکٹ کر رہے ہیں. یہ جو سارے امپیکٹس ہیں ہمارے, ساری جو انفلوئنسز ہیں, ساری جو افیکٹس ہیں جو ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ رہے ہیں, یہ ان کو پازیٹیو بنایا جائے. یہ ہے جو کہ اخلاقیات کا دائرہ ہے, اور اس لحاظ سے یہ معاملات کا تزکیہ کیا جا سکتا ہے.
جیسے آپ کو بتایا کہ میں اس این جی او میں کام کر رہی ہوں وار اگینسٹ ریپ, تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وی گیو اے لاٹ آف سپورٹ ٹو دا ریپ وکٹمز اینڈ دا انسیسٹ وکٹمز. تو جو انسیسٹ ہے, وی ہیو جنرلی فاؤنڈ اٹ از ریمپنٹ among the poor families where there are large families and where the wife and children are totally dependent on the breadwinner. So is there any way you could guide me what is the cause of that? We are all Muslims, I'm sure they are religious people, but what causes a father to behave in this horrible immoral manner and ruin his family, and the mother can't do anything? So because this would help us to help the victims and the mother.
I think that's
very
important.
I'm not sure if you would be able to, but I'm sure you can guide.
I would very humbly say that rather than drawing generalizations, it would be much better that an organization like yours were to conduct a research on such a thing, because abhi aapne ek badi important misal ke taur par baat farmayi hai that ye gareeb families mein, poverty ridden families mein zyada hota hai. Ye kya report zyada hota hai poverty ridden families mein, ya ye hota hi iska incident hai hi udhar, ye bhi ek research ka topic hoga. یہ کیوں, ہاؤ ڈز اٹ گیٹ نوٹیفائڈ, واٹ آر دا فیکٹرز جو کہ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اس کی نوٹیفیکیشن کر دی جائے اگر پرابلم اتنی سویئر ہے پاورٹی ریڈن. آئی تھنک اٹ شوڈ بی کنڈکٹیڈ, دیر شوڈ بی اے لاٹ آف ریسرچ, بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے تھیوریٹیکل جنرلائزیشن ڈرا کریں. اٹ وڈ بی مچ بیٹر. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سوسائٹی کو بہت زیادہ, یو نو, اٹ شوڈ ٹیک اٹ ویری سیریسلی, بیکاز یہ ایک صرف مورل کرائم نہیں ہے, یہ تو سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دینے والی بات ہے کہ کہ جس میں اس چیز کو جو ہے وہ ان نوٹس چھوڑ دیا جائے. آئی ٹرولی بلیو کہ اس کو آرگنائزیشن کو اسپانسر کرنا چاہیے, اس ریسرچ کو اسپانسر کرنا چاہیے, فائنڈ آؤٹ واٹ آر دا فیکٹرز, اور یہ بات کہ وہ کیا سچویشنل فیکٹرز تھے اس موقع پر کہ جس کے نتیجے میں یہ ہو گیا. کیا باقی سب لوگ جو ہیں اگر پاورٹی ریڈن فیملیز ہیں تو کیا ظاہر ہے ایک ہی کمرہ ہوگا تو اس میں باقی لوگ کدھر تھے, وہ کیا چیزیں ہیں جن کو کہ کنٹرول کرنا چاہیے, وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے. یو آر کوائٹ رائٹ دیٹ فار می ٹو بی ایبل ٹو آنسر دس کوسچن سٹنگ آن مائی ڈیسک would not even be fair. I think there should be a good amount of research and somebody, some organization should really sponsor this research and make it happen.
Sir, میرا question اس چیز سے related تھا کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے family system کے حوالے سے, تو میں ایک اس domain میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر for example ایک انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ریسورسز کے ساتھ معاشرے کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہوں, اس کو یہ ریسورسز میسر ہیں, لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کی کاہلی سستی شامل ہو, ہو سکتا ہے وہ اس کی پریفرنس نہیں ہے. فار ایگزامپل جس طرح کمبائن فیملی سسٹم کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, وہ سیپریٹ کرنے کے ریسورسز رکھتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے, اس چیز کو پریکٹس نہیں کر رہا. اسی طرح وہ اور سوسائٹی کے لیے یا اپنے فرینڈس کے لیے کچھ علمی یا عملی کام کر سکتا ہے جو وہ کسی وجہ سے نہیں کر رہا. تو کیا یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دی ہوتی ہے تو وہ اس نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا, تو کیا یہ والے پیرامیٹرز, مطلب وہ کچھ غلط نہیں کر رہا لیکن جو اچھا کر سکتا ہے وہ نہیں کر پا رہا, پریفرنس نہیں ہے اس کی یا سستی ہے یا کوئی بھی ایسے مسئلے, تو یہ گناہ کے زمرے میں مطلب اس کے آئے گا, اگر میں کوسچن ایکسپلین کر پایا ہوں.
نہیں ایکچولی بالکل واضح تو نہیں ہوا جی, لیکن تاہم میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ گناہ کے زمرے کی چیز تو نہیں ہے. یعنی گناہ کے زمرے کی چیز تو یہ ہے کہ جیسے وقت آپ وہ اپنی ذمہ داری سمجھنے لگ پڑے, آپ یہ محسوس کرنے لگ پڑے دیٹ اٹ از یور ریسپانسبلٹی. مثال کے طور پر میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس موقع پر ایک آدمی میرے پاس آ گیا ہے جس کی میں ہیلپ کر سکتا ہوں, اینڈ آئی ایم ریفیوزنگ ٹو ڈو دیٹ. یہ اب ایک قابل مواخذہ چیز بن گئی ہے, میرے پاس اس کے وسائل بھی ہیں, میرے پاس اس کی اپرچونیٹی بھی ہے کہ میں ہیلپ کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کر رہا ہوں. تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی, اس شخص سے بھی اگر ہو سکے تو معافی مانگنی چاہیے. لیکن آپ کچھ ایکٹیویٹیز شروع کرنا چاہتے ہیں, انسان کے اندر آپ نے جس طرح خود یہ فرمایا پروکریسٹینیشن بھی ہے, انسان کے اندر کنوکشن کی کمی بھی ہوتی ہے, انسان ڈائیورٹ بھی ہو جاتا ہے, ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. آپ پہلے کلیئرلی آپ نے جس طرح سے ابھی بات فرمائی ہے اس میں دو تین چیزیں آپ نے اکٹھی کر دی ہیں, وچ اگین ٹیلز می کہ شاید اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. آپ جو سوسائٹی کو, اپنی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, اس کو پہلے اپنے ذہن میں بہت زیادہ کلیئر کیجئے, اور یہ دیکھیے کہ کیا آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس کو. اور اگر ذمہ داری سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے شروع کر دینے چاہیے. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہفتے میں کوئی ٹائم فکس کر لیں جس میں آپ وہ کام شروع کر دیں, ٹھیک ہے جی, اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے شروع کر دیں. اس کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا, پرووائڈیڈ کہ وہ آپ کا انٹرسٹ بھی ہو. یعنی اگر ایک ایسا کام ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہ ہوں تو پھر وہ کام آپ زیادہ دیر کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. آپ کا انٹرسٹ بھی ہو, آپ اس میں وہ بھی رکھتے ہیں, صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اس کے لیے وسائل بھی رکھتے ہیں, اس کے لیے اپرچونیٹی بھی. آپ اس کے بعد ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور اینڈ ٹرائی ٹو بی ویری اسپیسیفک اباؤٹ اٹ. یعنی جتنا آپ اسپیسیفک کرتے جائیں گے اتنی آسانی ہو جائے گی آپ کو ڈیٹرمن کرنے میں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے تین چار چیزوں کی اکٹھے مثال دے دی نا جی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آپ کلیئرٹی کی کمی بھی ہو سکتی ہے. یعنی جس وقت کلیئرٹی کی کمی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے اندر کنوکشن کم ہو جاتی ہے, جب کلیئرٹی کی کمی ہو پھر وہ پروکریسٹینیشن کا بھی ظاہر ہے کہ شکار ہوتا ہے پروکریسٹینیشن کی, ہم سب شکار ہو جاتے ہیں, ہم سب انسان ہیں اور ہمارے اندر یہ غلطیاں ہیں. اس معاملے میں جو چیز بڑا اچھا رول پلے کر سکتی ہے وہ ہماری کمپنی ہے. اگر ہم ایسی کمپنی اختیار کر لیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہمیں آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور اس میں یو وڈ لائک کہ آپ اس کو شروع کر دیں, تو ٹرائی ٹو گیٹ اے کپل آف پیپل, دو تین چار پانچ لوگ اپنے آس پاس کی سوسائٹی سے, وہ کوشش کریں ان کے ساتھ ملنا شروع کر دیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں یا اس طرح کے کام میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس کے نتیجے میں جس طرح سے دو پارٹنرز جب واک پہ نکلتے ہیں تو ایک اگر سست ہو جائے تو دوسرا اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے, اس طرح سے آپ کو کمپنی میسر آ جائے گی وہ کام شروع کرنے میں, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو بی مور ریگولر ان دیٹ. تو اس طرح کی چیزیں ٹرائی کر کے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ کام خود بہت بڑی موٹیویشن ہے, جس وقت ہم کام شروع کر دیتے ہیں تو کام خود ہم سے آگے مزید آگے بڑھنے کی موٹیویشن ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, انسپریشن دیتا ہے. تو اس کو ٹرائی ٹو ٹیک دیٹ ان دیٹ اسٹرائڈ کہ ہم نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اپنی کمپنی کو ڈیولپ کریں, اس میں ایسے لوگ جو کہ ہمارے اس کام میں سپورٹیو ہو سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں, اینڈ دین لیٹس ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں, بہت بڑی کمٹمنٹس نہ کریں, بہت بڑی اسٹیپس لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہفتے میں ایک دن سے شروع کریں, اس کو آہستہ آہستہ پھیلانا شروع کر دیں.
سر آپ سے ایک سوال تھا, یہ ابھی آپ نے شروع میں کردار کی ڈیولپمنٹ کی, کریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کی, آئی تھنک یو مے ہیو ایون آنسرڈ اٹ تھرو آل دی اندر آنسرز, بٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں اس کو میجر کیسے کروں کہ میرے میں کچھ امپروومنٹ آ رہی ہے اس حساب سے, کہ میں اگر مجھے نہیں پتا, میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ میرے اندر میرا کردار کچھ حد تک امپروو ہوا ہے وقت کے ساتھ یا میری محنت کے ساتھ, تو میں یا دو میں سے ایک ایکسٹریم پہ کھڑا ہوں, یا تو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل ہی خراب ہوں اور مجھے بہت کچھ کرنا ہے ابھی, یا میں پھر دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوں کہ بھائی میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل, مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. تو مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ میرے میں کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کروں اس اسکیل کو یا اس جگہ کو یا ان ٹولس کو کہ میں کہہ سکوں کہ واقعی یار میں اب تھوڑا کچھ ہے میرے میں چینج ہے یا میں بہتر ہوا ہوں کسی حساب سے.
Everything is not measurable. ایک بات, کچھ چیزوں کے بارے میں سبجیکٹو ججمنٹس ہی رہیں گی. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, وہ سبجیکٹو ججمنٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل انریلائبل ہوتی ہیں, لیکن وہ میجریبل نہیں ہوتی. وہ کسی کی سینگ ہے نا جی کہ ناٹ ایوری تھنگ دیٹ کاؤنٹس از کاؤنٹیبل اینڈ ناٹ ایوری تھنگ دیٹ از کاؤنٹیبل کاؤنٹس, یعنی ایوری امپورٹنٹ تھنگ ان لائف. مثال کے طور پر اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے کسی چیز کے بارے میں, تو ہم اس کے لیے سروگیٹ میجرنگ طریقے اختیار کرتے ہیں گریڈز کے. ٹھیک ہے جی, ہم 3 گھنٹے کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس ٹیسٹ پہ گریڈز کو ریپرزینٹیٹیو مان لیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کا, جبکہ پوری دنیا مانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم آبجیکٹیولی ان اے پرٹیکولر نمبر اسپیسیفکلی میجر کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, اگر ناممکن نہیں ہے تو. اور یہی اس مشکل کی وجہ سے آج تک ہم اس کے اوپر بہت کچھ ڈیولپ کر رہے ہیں ایٹ اے ہیومن لیول دنیا بھر میں, کہ اچھی اسیسمنٹ کسے کہتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایک تو یہ کہ اس میں آپ پہلے کچھ کرائیٹیریا رکھتے تھے, کوئی چیز تھی کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہو, مثال کے طور پر کہ ہمیں اس طرح سے کوئی اقدام کرنا چاہیے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سوچا ہو کہ ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ اقدام کیا تھا, تو از دیر اینی ڈفرنس ان مائی thoughts, is there any difference in my feelings. تو ایک تو یہ آپ کی اپنی سبجیکٹو ججمنٹ ہے. دوسری اس معاملے میں جو ایک رول پلے کر سکتی ہے چیز, وہ آپ کے جن لوگوں کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جن لوگوں کے اندر آپ روز مرہ کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں, وہ بہت رول پلے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کے خیال میں آپ کے اندر واٹ آر دا تھنگز دیٹ دے وڈ لائک ٹو سی ڈفرنٹ ان یو, and then ٹیک اے ڈیسیجن, یہ الٹیمیٹلی تو آپ ہی کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ان میں سے کن چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیورٹی پر آنی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جب آپ سامنے رکھ لیتے ہیں تو پھر یو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. تو اس میں جو آپ کے سوال کا الٹیمیٹلی جواب ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی واضح کرائیٹیرین ہو, اور وہ کرائیٹیرین کو اگر کوئی آدمی جو ہے جس سے ساتھ آپ مل کر یہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ڈسکس بھی ضرور کر لیں. مثال کے طور پر ایک پیرنٹ اگر میرے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے بچوں کی کردار کی تعمیر چاہتا ہوں, تو میں اس سے یہ ضرور کہوں گا کہ جی آئی وڈ لو ٹو کنٹریبیوٹ, میں جو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکوں ضرور کرنا چاہوں گا. تاہم ہاؤ وڈ یو نو کہ بچہ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے اور وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اس کے اسکول کے گریڈز بہتر ہو جائیں, تو پھر اب دس از اے پوائنٹ کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے, بیکاز میرے ذہن میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. یعنی اسکول کے گریڈز بہتر کرنا جو ہے وہ تو اصل میں میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں یہ کہ اگر ہم لرننگ چاہتے ہیں تو لرننگ کے لیے 10 سال بھی کم ہوں گے, لیکن اگر ہم گریڈز چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے لیے آخری 3 مہینے میں تیاری کر کے گریڈز لے لینا جو ہے پاسبل ہو, اور یہ پاسبل ہوا ہے. تو اس وجہ سے وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہیں اٹ ریلیٹس ٹو دا وٹ ایور ایکٹیویٹی وی آر ڈوئنگ, ہم اس سے وہ کورسپونڈ کرتی ہے, اور اگر وہ کرتی ہے کورسپونڈ تو پھر دیکھیں کہ اس ایکٹیویٹی کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے بات تھوڑی سی واضح ہو جائے. یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا میڈیٹیشن کے حوالے سے, ابھی اس کا ذکر کیا, ایسے ہی چلتے پھرتے بات ہو گئی. میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کی ذہن کے جو پروسیسز ہیں ان پر آپ کے کنٹرول کو بہتر کرتی ہے انڈر نارمل سرکمسٹانسز. اب اگر آپ اس کو جاننا چاہیں یا جانچنا چاہیں تو طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ آج ٹرائی کریں اس وقت, ٹھیک ہے جی, اس وقت سے مراد ہے کہ آج اس سیشن سے نکل کے ٹرائی 10 منٹ سائلنٹ ٹائم, اور یہ دیکھیے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کتنا ڈائیورٹ ہوتا ہے, ڈسٹریکٹ ہوتا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, جتنا چل رہا ہے. اور اس کے بعد میڈیٹیشن کی پریکٹس کریں فار اباؤٹ اے ویک, 10 days, 20 days, 30 days. آپ نے جب یہ کی اور پھر آپ اس کو دوبارہ ٹرائی کریں اور دیکھیں کیا آپ کا جو ذہن کی ڈسٹریکشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. اب یہ ہے ساری آپ ہی کی ججمنٹ, لیکن اینڈ یو آر دا بیسٹ جج بیکاز یو ہیو ڈیسائڈیڈ, آج آپ نے ڈیسائڈ کیا کہ مجھے کچھ پرابلم ہو رہی ہے جس کے باعث مجھے اپنے کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں کوئی کام کرنا چاہیے یا کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. یہ آپ کی سبجیکٹو ججمنٹ ہے, اور اس میں آپ نے ہو سکتا ہے وہ سبجیکٹو ججمنٹ اپنے آس پاس, اپنی سوسائٹی, اپنے آس پاس کے لوگوں سے مشورہ کر کے ڈیسائڈ کی ہو, اور اگر ایسا ہے تو پھر آئندہ بھی ان سے مشورہ کرنے کہ کیا آپ کو میرے رویوں میں کچھ فرق محسوس ہوا ہے, یو نو ٹرائی ٹو گیٹ دیٹ فیڈ بیک, بیکاز آئی آنیسٹلی فیل یہ آپ کی بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹ بات ہے یہ کہ ہم جب ان کورسز کو کئی دفعہ ہم نے کوشش کی کہ جب انسٹیٹیوشنز یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم میجر کس طرح کریں گے, میجر نہیں کر سکتے آپ کیریکٹر کو میجر کر ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیے نجم آج یہاں پہ نہیں ہے, لیکن وہ جب ہوں تو انشاءاللہ کبھی ان کے ساتھ اچھی ڈسکشن ہوگی اس پہ. ہمارا جو یہ جن کا ذکر بھی کیا ابھی کومل نے, 6 seconds جو ہیں یہ اس کو میجر کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کو, ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں ایموشنل انٹیلیجنس از ناٹ سم تھنگ وچ کین بی آبجیکٹیولی میجرڈ. وہ جو میجر کرتے ہیں اگر اس پہ غور کیا جائے تو وہ میجرنگ ٹیکنیک جو ہے وہ سیلف اسیسمنٹ ہے, وچ از اے ہائیلی انریلائبل ٹیکنیک ایز فار ایز پیپل آر کنسرنڈ. اس کو وہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. اس پہ میرا اور نجم کا اختلاف ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ 10 دن ایک آدمی کو آبزرو کریں مختلف اتار چڑھاؤ میں زندگی میں, اور اس کے رویے اور اس کے ریسپانسز کو دیکھیں تو آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ ایموشنلی کنٹرولڈ آدمی ہے. اور ایک آدمی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایموشنلی کنٹرولڈ نہیں ہے, یہ بڑا ریئیکٹو آدمی ہے. لیکن اب اس کو نمبر اگر دینا ہو تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو دیٹ از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے کہ اس میں سبجیکٹو ججمنٹ, سبجیکٹو اسیسمنٹس can play a role, they do play a role, and they help, they really help. Lekin objective assessment in cheezon mein nahi ho sakti ji. Meri had tak, meri samajh ki had tak nahi ho sakti. Aur bahut important cheezein jo hain, wo unmein nahi ho sakti. Yani misal ke taur par hum ye nahi keh sakte ki ye jo mera dost hai, ye isme 90 level ki courage hai aur 20 level ki understanding hai. Ye this is very difficult. Karte hain log isko, humne psychometric banane ki koshish ki hai, but I think that is not a very reliable way of going about it. But anyway, there can be a difference.
Sir, main ye puchna chahti hu, mera na bachchon ke hawale se hai kuch thoda sa, ki mera ye hota hai aksar ki main kuch apna anger management nahi kar pati, baz waqt kuch workload ki wajah se ya phir kuch aur is tarah ki mukhtalif cheezon ki wajah se. To main normal routine mein bachchon ke sath thodi bahut baat karne ki koshish karti hu, aur main apni taraf se ye chahti hu ki unko ye lage ki main unse pyar karti hu, ya woh jisko unconditional love kehte hain, kyunki woh to bahut ek bahut badi cheez ho jati hai, lekin main koshish karti hu ki main unko ye dene ki koshish meri hoti hai. Lekin acha usme ye hota hai ki phir jab kuch is tarah ka masla hota hai aur mere se apna anger nahi main manage kar pati, to main unko daant deti hu. اچھا میں ڈانٹ دیتی ہوں تو اس کے کچھ ہی دیر بعد مجھے احساس ہوتا ہے تو میں ان سے سوری کرنے کی کوشش, مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ ود ان 15-30 منٹس مجھے نا میں کہتی ہوں کہ میں سوری کر لوں. جب میں اس کے تھوڑی ہی دیر بعد بچوں سے سوری کرنا چاہتی ہوں تو بچے مزید میرے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ماما آپ نے کیا ایک مذاق بنا دیا. تو مجھے اس ٹائم پہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کو کیسے بتاؤں کہ بیٹا میں نے اپنی غلطی ریئلائز کر لی ہے تو اب میں آپ سے سوری کر رہی ہوں, لیکن اب وہ مجھے انہوں نے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماما کی تو یہ عادت ہے کہ وہ پہلے ڈانٹتی ہیں اور پھر سوری کر لیتی ہیں. تو میں ان کو یہ کیسے سمجھاؤں یا میں ان کو کیسے کنوے کروں کہ میں اصل میں میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے کسی وجہ سے آپ کو ڈانٹ دیا, یا میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر پیار کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی ڈانٹ نہ پڑے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ ناممکن سی بات ہے. تو مجھے یہ سر میں کیسے بچوں میں یہ ان کو کنوے کروں کہ اگر میں سوری کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یا کس وجہ سے میں کر رہی ہوں, تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا بتاؤں.
خیر سب سے پہلے تو جو آپ نے ابھی یہاں پہ بتایا ہے وہی ان کو بھی بتائیں کہ یہ پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے, یہ وجہ ہوتی ہے غصہ چڑھنے کی, اور اس میں ان کا کیا رول ہوتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. غصہ چڑھنے میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اف یو ہیو ایڈیکویٹ ٹائم, آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے, آپ آرام سے ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں, تو آپ کو جنرلی غصہ نہیں چڑھے گا. لیکن اگر آپ اف یو پریسڈ فار ٹائم تو آپ کو زیادہ جلدی آپ کا جو تھریش ہولڈ ہے غصے کا وہ کم ہو جائے گا. تو یہ چیز ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کیا چیز ہے کہ جو جس کے باعث آپ کو غصہ چڑھا, وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ڈپینڈنگ اپان دا چائلڈز ایج, اگر وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں, یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ بچے جو ہیں انہوں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے نہیں ابھی سمجھنی, جو ان کی ابھی انڈرسٹینڈنگ کی اسکوپ سے باہر کی چیزیں ہیں, اس میں ان کو نہ ڈالیں. لیکن جو سوال انہوں نے کر دیا ہے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس چیز کو انشاءاللہ آپ اگر اس پہ غور کریں گی, اور چونکہ اب ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ آئندہ کسی میں, یا آپ کے پاس اگر وہ گروپ میں تو آپ ہیں ہی, اس میں اگر بھیج دیں تو انشاءاللہ آپ سے الگ سے بات کر کے میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب بھی دے دوں. کیونکہ پرابلم کو پوری طرح سے سمجھ لینا چاہیے. جس کو آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ غصہ چڑھ جاتا ہے, تو اس کو بھی نوٹ کریں کہ کیا واقعہ ہوتا ہے جس پہ غصہ چڑھتا ہے, یعنی جس واقعے پہ آج چڑھا ہے اینڈ یو ریئلی فیل سوری اباؤٹ اٹ, وہی واقعہ جب کل ہوگا تو اس پہ غصہ نہیں چڑھنا چاہیے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ ایک ٹھیک بات ہے, یعنی وہ نہیں چڑھنا چاہیے, ادروائز پھر ہم نے کیا کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں. اس کو کوشش کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کے بارے میں اپنے اوپر قابو پا سکیں, اینڈ ہاؤ واٹ کین آئی ہیلپ یو ان دیٹ کیس.
सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना ज्यादा टाइम दे दिया हमें, और आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह हम जल्द ही नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सब वल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।
बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।